तो फिर एतमाद करने के लिए भी दलील की जरूरत है।
अगले दिन मैं उसके घर गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बरसों से कोई नहीं है। आपको पता है मुझ पर कैसी हिस्तारी हुई?
कैसी हिस?
आपने बड़ी ख्वाहिशात नामी किताब पढ़ी है?
नहीं।
मुझे लगा कि मैं मिस हैविशम हूं।
मिस हैविशम?
वही बुढ़िया जिसकी जवानी में वो मर्द जो उससे शादी करने वाला था, ठीक उसकी शादी के दिन उसको धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। बुढ़िया पागल हो गई। उसी शादी के जोड़े और आसाइशों जेवरात के साथ 40-50 साल तक उसका इंतजार करती रही। आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक 70 साल बुढ़िया शादी के जोड़ों के साथ। मेरा हाल भी वही था, इस फर्क के साथ के उसके न आने का मुझे यकीन था।
कोई भी शख्स धोखा खा सकता है।
प्यार करने वाले के धोखे में आना हौलनाक है। मैंने कुछ दिन जुकाम का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली। मुझे वक्त की जरूरत थी ताकि अपने पांव पर खड़ा हो सकूं। कई दिन तक, दिन में कई बार वो मुझे वो तस्वीर ईमेल करती थी। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या चाहती है। यहां तक कि
वो बर्नार्ड के साथ आता है तुम्हारे पास। उसका निकनेम बर्नार्ड है, आपको पता है?
यानी उसके काम की बारीकबीनी का जवाब नहीं है। उसी प्रोफेसर बर्नार्ड की तरह दुनिया का बेहतरीन दिल का सर्जन।
अमीर, तुमने फिर कोई नई किताब पढ़ ली?
वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो सिफारतकार की हैसियत से बैरूत में बरतानी सिफारतखाने में काम कर रहा था। ज़ेन और फारसी और अरबी जबानों में उबूर रखने वाला। कुछ साल पहले वो इक्तसादी अताशी के तौर पर बरतानिया की वजारत खारजा की तरफ से डिप्लोमेटिक स्टे की दरख्वास्त देता है और उसके सबके रिकॉर्ड की बिना पर उसके आने की मुखालफत की जाती है।
और अब इस बीच कोई चीज बदल गई क्या?
इसमें बुराई नहीं है कि गाहे बगाहे उनमें से एक आ जाए। हम देख लेते हैं कि क्या उनकी खोपड़ी में क्या है, उनके काम की पॉलिसी क्या है और किस हदफ के पीछे लगे हुए हैं। वो जाती लिबास में और जाती नंबर प्लेट की वाली गाड़ियों के साथ शहर में चक्कर लगाता है। हमारा काम उस शख्स के ताल्लुकात तक दस्तरसी और इंटेलिजेंस सरगर्मियों को नाकाम बनाना है।
कुछ किया भी है उसने?
इन एक दो दिनों के दौरान जब से उस पर निगरानी की जा रही है, एक जवान मर्द और औरत के साथ उसके मशकूक ताल्लुकात थे, चाहे बरतानवी सफारतखाने के अंदर चाहे वहां से बाहर। सईद साहब।
जी माफ कीजिएगा।
ताकुब और निगरानी के बारे में वजाहत दो।
जी, ये एक सैटेलाइट है जीपीएस की तरह। सैटेलाइट की लहरें इससे हसास हैं, जिस पर यह लगाई जाए ट्रेस की जा सकती है।
अरे साफ है भाई, जरूरत नहीं है।
मैं और चमका देता हूँ।
शुक्रिया। अच्छा ये ले लो।
खुदा तुम्हारे बच्चे सलामत रखे।
जाओ।
शुक्रिया। तुम्हारा शीशा भी साफ कर दूँ? बहुत अच्छा साफ करूंगा, बहुत अच्छा। करने दो ना। میں نے اس طرح سے اپنا کام کیا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ شخص شیشے سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا.
ایسے کہہ رہے ہو جیسے بارودی سرنگ بچھا کے آئے ہو.
دیکھو کچھ تمہیں معلوم تھا کہ بارودی سرنگ کے ماہرین اپنی زندگی میں ایک مرتبے سے زیادہ غلطی نہیں کر سکتے.
دو بار. پہلی مرتبہ اس وقت ہے جب وہ اس پیشے کا انتخاب کرتے ہیں.
ہاں بخدا ہم بھی اپنے اس پیشے سے صحیح سالم گزر جائیں تو قسمت سے ہمارا ساتھ دیا ہے.
سب سے کہو کہ اسے ختم کریں, راستے کو کھول دیں.
چلو اب سلو کر لو. بری بات ہے تم بڑے ہو گئے ہو. چلو سلو کر لو.
چل پڑا. تقریباً دو ہفتے ہو رہے ہیں کہ ہم برنرڈ صاحب پر نظر رکھے ہوئے, لیکن
میں سوچ رہا ہوں کہ ہم زیادہ حساس ہو گئے ہیں اس شخص کے بارے میں. ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور جاسوسی کے کام کو چھوڑ دیا ہو اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا ہو.
ان باتوں سے زیادہ پیچیدہ ہے, ہمیں صابر ہونا پڑے گا.
ہمیں ایک چیز کا پتہ چلا ہے, برنرڈ کی آمد و رفت کے گراف کو باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے. ایک بات کا اندازہ لگا کہ برنرڈ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ الہیہ کی طرف کی گلیوں میں رک جاتا ہے اور ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے.
تعاقب اور نگرانی اس کے لیے نہیں رکھا ہے تم نے؟
آج ہی ہمیں اس کا پتہ چلا ہے.
اگر ہم نے برنرڈ کو ایک خفیہ ایجنٹ کے طور پر زیر نگرانی نہ رکھا ہوتا تو شاید ہم اتنی جلدی تم تک نہ پہنچ پاتے اور تمہاری پوزیشن اس سے بدتر ہو جاتی.
اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے اپنے کام سے آپ پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی چیز کھونے کے لیے میرے پاس اب نہیں ہے. میں آخر آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا جبکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو جانتے ہیں.
میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو, لیکن ہمارے بھی قوانین ہیں.
جیسے؟
جیسے کہ حقیقت کئی حصوں پر مشتمل ہے. ممکن ہے کہ ایک حصہ تمہارے پاس ہو اور دوسرا بھی تمہارے پاس ہو, پھر پزل کی طرح ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں.
میں حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بھی میں نے کیا ہے, جو بھی غلطی میں نے کی ہے, مجھے حقیقتاً پتا نہیں ہے. میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ تجارتی معاہدوں اور مذاکرات کے کچھ اوراق ان کے کیا کام آئیں گے. آخر اس میں کون سی ایسی اہم چیز تھی؟ مجھے واقعی اس بارے میں کچھ نہیں پتا. یقین جانی ہے.
Thank you.
کچھ دن کے بعد کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور الہیہ میں کسی گلی کا ایڈریس دیا. وہ بولا کہ میں گاڑی کے پہنچنے کے انتظار میں رہوں اور فوراً اس کی ڈکی میں کود پڑوں. میں بولا میں اس طرح سے کہیں نہیں جاتا ہوں. وہ ہنسا اور بولا کہ ایک قاتل کے لیے بہترین کام چھپ جانا ہے. مجھے پتا نہیں تھا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن ان کی خفیہ سرگرمیوں سے بری طرح مصیبت کی بو آ رہی تھی.
آرزو اور کاوے نے تمہارے ساتھ رابطہ کیا تھا؟
وہ تو ایسے رفو چکر ہوئے جیسے ان کو زمین نکل گئی ہو. وہ مرد مجھ سے بولا کہ اگر مقررہ جگہ پر میں نہ پہنچا تو وہ تصویر جو جنازے پر لی گئی ہے وہ پولیس کو دے دے گا. مجھے انتخاب کرنا تھا، یا مجھے ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا تھا، یا پھر
یا تم ان کے لیے جاسوسی کرتے.
میں نے انہیں کوئی خاص انفارمیشن نہیں دی ہے، یقین کیجیے آپ.
روز بے نراقی، پیدائش 1961، اسٹاک ہوم، تعلیم انگریزی زبان کے ترجمے میں پوسٹ گریجویشن. 5 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. 10 سال کی عمر میں والد کا ایکسیڈنٹ کے حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا چچا اس کی سرپرستی قبول کر لیتا ہے، اپنے ساتھ لے آتا ہے ایران. وہ چچا وزارت اقتصاد کا ریٹائرڈ مترجم تھا اور اس نے بہت دوڑ دھوپ کی تاکہ روزبہ کے لیے کسی کام کا بندوبست کرے.
یہ مت کہنا کہ اسی وزارت خانے میں اس کو کام میں مصروف کر دیا ہے.
افسوس کے ساتھ ہاں، وہ ایک مثالی ملازم تھا اور لانے والا بھی ایک معتبر شخص تھا. تو روزبہ کو وزارت میں متعارف کراتا ہے اور روزبہ وہاں کام میں مصروف ہو جاتا ہے.
وہ چچا زندہ ہے ابھی؟
اس کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اور بھی روزبہ کی زندگی میں نہیں ہے. روزبہ کو مترجم کے طور پر وزارت کے ملکی اور غیر ملکی معاہدوں کے بارے میں علم ہے. اس وقت بھی ڈیوٹی پر مامور ہے وزارت تجارت میں، لیکن وہ اپنے تمام کام اپنے آفس میں انجام دیتا ہے.
میرے گھر میں چور آ گیا تھا. زندگی سے میں بالکل تھک ہار چکا تھا، حتیٰ کہ میرے اندر اپنے باپ کی واحد یادگار کو محفوظ بنانے کی طاقت بھی نہیں تھی. میں صوفے پر بے سود پڑا ہوا تھا. میرا سارا ماضی میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ وقت جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش تھا، یا وہ وقت جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، یا وہ وقت جب میں اپنے باپ کے جنازے پر زار و قطار رو رہا تھا، یا وہ وقت جب میں بالکل تنہا ہو چکا تھا، اور پھر وہ 2 گھنٹے پہلے کا وقت جب میں نے برنارڈ کو وزارت کے دروازے پر دیکھا، جو مجھ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی غلطی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں.
ہمیں کہاں اٹھا لائے بھائی؟ یہ بھی کوئی جگہ ہے تم ہمیں اٹھا کر لائے ہو؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فوف،
اتنا بڑبڑاؤ مت، اٹھو زیادہ تلاش کرو، ضرور کوئی چیز ہمیں مل جائے گی. کوئی بھی اپنی اہم چیز سامنے نہیں رکھتا ہے.
करो, चोर सिपाही का खेल बंद करो, हर लम्हे इम्कान पाया जाता है कि वो पहुंच जाए।
अब तक हम चोर नहीं बने थे, जो अब बनना पड़ गया है।
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलो
आप मुझे पकड़ने जल्दी आ जाते।
मैंने कहा ना कि हमारे भी कुछ कवानीन हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
आपने मुझसे खिलवाड़ किया है, एक शिकार की तरह, एक चूहे की तरह।
शिकार के लिए चारा उन्होंने तो लगाया था तुम्हारे लिए।
मैं आपके जाल का चारा बन गया।
हमारा काम जाल बिछाना नहीं, जाल को हटाना है।
लेकिन आपने मुझे जाल से बाहर नहीं निकाला, वहीं छोड़ दिया कि वो मुझे कुचल डाले। तकरीबन हफ्ते में एक बार मैं बाग जाता था। वो लोग एक झूठ आजमाने वाली मशीन के साथ मुझे आजमाते थे। बर्नार्ड एक अजीब आदमी था, उसे किसी पर कोई एतमाद नहीं था। तमाम मराहिल में उसे खुद होना चाहिए था, हत्ता कि मुझे मुंतकिल करने के लिए वो खुद आता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद भी यकीन कर लिया था कि कोई चारा उनके साथ तआवुन के अलावा मेरे पास नहीं है। मतलब ये कि यह भी एक तरह का काम बन गया था मेरे लिए। पहले मैं वहां बैठ जाता था, फिर अपनी सारी ज़हनी मालूमात को मैं उनके लिए लिख देता था, उन मुज़ाकराती नशस्तों के बारे में जिनमें मैं खुद भी मौजूद होता था, जैसे समंदरी नकल व हमल के मुज़ाकरात, मुआहदों का इनेकाद, इलाके के मुल्कों के साथ तजारती मुज़ाकरात, गोश्त और मकई और गंदम और फलों की खरीदारी और बहुत सी चीज़ों के बारे में जो होते थे मुज़ाकरात, वो सब कुछ मैं उनके हवाले कर देता था। फिर सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो झूठ आजमाने वाली मशीन से मेरा टेस्ट लेते थे, ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए कि मैंने झूठ नहीं बोला है।
हमारे साथ अपने ताउन के बारे में किसी को कुछ कहा है तुमने?
नहीं,
किसी को भी नहीं।
किसी को नहीं।
वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आज तुमने हमें दी है वो सही है?
बिल्कुल।
वो झूठ बोल रहा है?
नहीं, सिर्फ जरा टेंशन में है।
किस चीज से डरते हो? मुस्तकबिल से?
नहीं, अपने माजी से।
हम पर तुम्हें एतमाद नहीं है? हम राजदार लोग हैं।
मैं अब खुद भी उस राज को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता।
अजीब है, अफराद जितने बड़े होते जाते हैं उनके दिल छोटे होते जाते हैं।
मैं आए दिन ज्यादा बेहौसला, ज्यादा गुस्से वाला होता जा रहा था, यहां तक कि मैंने मुट्ठी भर भर के गोलियां खाना शुरू की। मुसलसल डरावने ख्वाब देखता था।
गोली खाने और इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करने के बजाय तुमने बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचा कि अब उनके साथ ताऊ नहीं करोगे?
लग रहा है आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं।
मैं सुन रहा हूँ लफ्ज ब लफ्ज।
अच्छा तो फिर ये कैसा सवाल है? पहले मैंने तावुन किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उम्र के आखिर तक जेल के कोने में पड़ा रहूं, और फिर मैंने अपना तावुन जारी रखा इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता था।
तुम मरना नहीं चाहते थे?
उनके हाथों नहीं, यही कि मेरी जिंदगी उनके हाथों में थी काफी था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत उनके हाथ में हो।
क्या बात है, परेशान हो?
नहीं भाई, जुकाम हो गया है।
तुम्हें डिप्रेशन है, डिप्रेस लोगों को ज्यादा जुकाम होता है।
जिंदगी मेरे लिए तकरारी हो चुकी।
तो फिर तुम बेजाय नाशुकरी कर रहे हो। शादी कर लो, ऐसा शोर शराबा मचाएगी कि यकसा हालत से बाहर निकल आओगे। अच्छा किसी को कहना मत, तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए हौसला अफजाई का सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसकी मिठाई भी मत भूलना।
मेरे ज़मीर के मलामत, मेरे खौफ हरास और दूसरे आलाम पर इजाफा हो गई थी। हर रोज जब मैं ऑफिस जाता था तो ऐसा लगता था कि हाई वोल्टेज बिजली मेरे जिस्म के साथ कनेक्ट हुई है, लेकिन अब मेरा हौसला खत्म हो गया था। अगर वो रास्ता कि जिस पर मैं चल पड़ा था मेरे अपने हाथ में नहीं था, तो कम से कम मैं चाहता था कि मेरी मौत मेरे हाथ में हो।
हर शख्स को उसके कमजोर पॉइंट के जरिए नुकसान पहुंचाते, बास को पैसों के जरिए और बास को हवा हवस के जरिए, लेकिन तुम्हारा वाला तुम्हारी तन्हाई थी।
तन्हाई? उनको कैसे पता चला था?
तुम समझते हो कि तुम्हारी जाती डायरी और तुम्हारे कागज कलम का मुख्तार सिर्फ तुम ही थे? सिर्फ तुम ही थे, दूसरे नहीं थे? जरूर कोई और भी था तुम्हारे काम करने की जगह पर, जो तुम्हारी टोह में रहता था और तुम्हारी तमाम जाती डायरियों और कंप्यूटर फाइलों पर नजर रखता था।
मतलब कौन?
फिलहाल इतने ही जानो, ये काफी है तुम्हारे लिए।
लोगों ने मुझे क्यों मरने नहीं दिया? क्यों आपने मुझे बचाया? ताकि मुझे फांसी देकर आईने इबरत बना दें?
कानून भी बनाते हो और हुक्म भी जारी करते हो।
फर्क क्या पड़ता है कौन हुक्म जारी करेगा, मगर हुक्म तो यही है, नहीं है?
इस मर्तबा हम उनके साथ खेल खेलना चाहते हैं, उनके साथ। अलबत्ता ये प्रोग्राम में था, लेकिन तुम्हारी खुदकुशी ने हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया।
अच्छा तो खेल जारी है, सिर्फ मेरी टीम बदल गई है।
इस फर्क के साथ कि तुम अपनी ही टीम में खेल रहे हो, ना कि हरीफ की।
मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं
है। ये बेहतरीन काम है जो तुम्हारी तबीयत को ठीक कर देगा। सब लोगों को अपनी गलतियों के इजाले का मौका हासिल नहीं होता, इसकी कदर जानो। अस्पताल की फाइल में तुम्हारी बीमारी दवा का जहरीला होना बताया गया है, न कोई और चीज। अब जब तुम यहां से जाओगे बाहर तो तुम्हारे पास आएंगे।
ये लो, इतनी सारी नाकाम फोन जो सुबह से मैं हाजिन खातून को कर रहा हूं। वाजह है कि इससे बदस्तूर अभी तक कोई कामयाब नतीजा नहीं निकला है, और बदस्तूर रिश्ते के लिए कोशिश कर रही हैं।
अभी तक तुम्हारे रिश्ता मांगने का काम चल रहा है?
कल रात दूसरी मर्तबा थी जो हम गए, वो भी तो खुदा से यही चाहते हैं। मैं भी बस जरा सा
अपने काम की मुश्किलात के बारे में बताया है उसे।
अब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो मामला हल है। कि अब तक शहजादी और भिखारी की शादी नहीं हुई है। लीजिए, एंगेज है वो। हाजी साहिबा दुल्हन के साथ मजे उड़ा रही हैं।
पागल हुआ जा रहा था। फिल्म द ट्रूमैन को देखा है आपने? मुझे लगता था कि मुसलसल वो मेरी निगरानी कर रहे हैं, घर में, काम की जगह पर, सड़क पर। अब मैं लोगों के पीछे नहीं चलता था, उनसे भाग जाता था। जिसे भी मैं देखता था लगता था कि वो बर्नार्ड का जासूस है। फिर बाद में मुझे पता चला कि जब मैं घर पर नहीं था तो वो मेरे घर में भी आए थे। अब कोई भी जगह मेरे लिए महफूज नहीं थी, कोई भी जगह। वो एक शिकारी की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे। उसी इब्तदा से ही अपनी आदतों का शिकार हो गया था मैं। तभी इब्तदा से ही कामिल ने मुझे जाल में फंसा दिया था। जितने भी खास आदमी हैं सब पे लानत हो। उसके बाद अब मेरा किसी पर भी एतमाद नहीं रहा था, किसी पर भी। मेरा घर भी महफूज नहीं था। आपको तो सब कुछ पता है, बता सकते हैं कि आपने मेरा क्यों इंतखाब किया?
अभी तक तुमने बायो टेररिज्म के बारे में कोई बात सुनी है? इनको देख रहे हो, ये सब आलूदा हैं। मतलब कि ये आलूदा हो गए हैं। ये है बायो टेररिज्म। जिस वक्त कौमी सिक्योरिटी और सेहत आमा बेक वक्त खतरे से दुचार हो जाती है, उस वक्त सुपर टेररिज्म अपना पांव फसार देता है। सुपर टेररिज्म का कारतूस और गोली से कोई काम नहीं, खून और खुरेजी से कोई काम नहीं, इंसानों की जान और नफ्सियात के साथ काम है। वो भी एक कौम से, ना कि एक फर्द से।
अब इस बीच में मेरा क्या काम है?
उन्हीं मुआहिदों के फाश हो जाने का नतीजा जिनका जनाब अली तर्जमा करते थे, ये हुआ है। आलूदा गल्ले का एक पहाड़ जिसको पूरा मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि इन सबके बदले में कितने डॉलर मुंह से निकल जाते हैं? तुम्हें पता है कि आवाम की गजाई अशिया को आलूदा करने का क्या मतलब है? तुम क्या जानते हो आलूदा पैकेज का क्या मतलब है? मतलब है कैंसर की पैदावार। कैंसर का तो तुम्हें पता है ना क्या मतलब है? तो फिर मत कहो कि मैंने कुछ नहीं किया है। बर्नार्ड के साथ तुम्हारा रब्ता जिस तरह से पहले था वैसे ही होना चाहिए। कुछ भी उसमें तब्दीली होना चाहिए। हमेशा की तरह तुम जाओगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तुम दोगे।
दोबारा?
हाँ, लेकिन इस मरतबा वो इंफॉर्मेशन जो हम तुम्हें देंगे।
झूठ आजमाने के आले का क्या होगा?
हमने उसका भी सोच लिया है। शाम को 3 बजे इस एड्रेस पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आज रात तुम्हारा एक छोटा सा बिरूनी ऑपरेशन है।
ऑपरेशन? ऑपरेशन कहाँ के लिए?
एक माइक्रोचिप फिट करना है तुम्हारे बदन में।
माइक्रोचिप?
खाने की चीज है
ये झूठ पकड़ने की मशीन को धोखा देता है। जो फ्रिक्वेंसीज वो लोग मशीन को भेजते हैं, हर किस्म के हालात में दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल दिखा सकता है।
अगर झूठ बोलेगा तो इसके जरिए पकड़ा जाएगा?
नहीं, मगर ये कि इसके बाद कोई ऐसा आला तैयार किया जाए जिस पर यह तरीका मौसर ना हो।
یہ ہمارے کام کا سب سے حساس مرحلہ ہے. تمہیں پچھلی بار کی طرح پرسکون طریقے سے اپنا لیپ ٹاپ انفارمیشن کو پرنٹ کرنے کے بہانے اس کے لیپ ٹاپ کے پاس رکھنا پڑے گا اور آن کرنا ہوگا.
اس سے کیا ہوگا؟
وہ تمام انفارمیشن جن کی ہمیں ضرورت ہے اس لیپ ٹاپ میں ہے. لہٰذا تمہیں اپنے اس لیپ ٹاپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس سسٹم سے قریب کرنا ہوگا تاکہ ہم ایکٹیو بلوٹوتھ کے ذریعے اس کی تمام معلومات کو خالی کر سکیں.
اگر وہ سمجھ گئے تو کیا ہوگا؟
تم ڈر رہے ہو؟
یہ سوچ کر کہ میری واقعی شکست ہو سکتی ہے. ہاں
اوبلوموف کی طرح؟
بالکل.
لیکن تم اوبلوموف نہیں ہو, تم ہم لوگوں میں سے ایک ہی آدمی ہو جو ابھی بھی بہت سے کام کرنے توانائی رکھتا ہے. ہمارا کام خیال کی بنیاد پر نہیں ہے, بالکل حقیقت ہے. لہذا شکست اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی.
اس کے سسٹم کے لیے کیا پیش آئے اسے پتا نہیں چلے گا, کیونکہ اس کی پوری انفارمیشن کی ایک کاپی تمہارے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہمارے سسٹم میں منتقل ہو جاتی ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز تمہارے لیپ ٹاپ میں کاپی نہیں ہوگی جس کے فاش ہونے کا خطرہ ہو. لیکن صرف
صرف کیا؟
تم ایسا ماحول فراہم کرو جس کی بنیاد پر تمام انفارمیشن کاپی ہو جائے, نہیں تو ادھوری معلومات نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ
کیا
کوئی بھی قتل رونما نہیں ہوا ہے, تم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے.
آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں؟
نہیں, وہ شخص جس کو آرزو نے مارا ہے وہ کرتا باز تھا.
آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود دیکھا وہ مر گیا.
کرتب باز لوگ اچھے اداکار ہوتے ہیں. کامل کے بقول جھوٹ نازک ہوتا ہے. ایک نازک اور صحیح پلان تھا.
اس آدمی کو آپ نے پکڑ لیا ہے؟
نہیں.
آرزو اور کامل کا کیا ہوا؟
تمہاری گرفتاری سے پہلے برنارڈ کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی, لیکن ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم برنارڈ کے پروگرام کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے.
یعنی وہ ابھی آزاد ہیں؟
ان میں سے ایک.
کیا مطلب؟
کامل مارا گیا اسی کے ہاتھوں جس سے تم سمجھتے تھے کہ اس کی بہن ہے. آرزو وہی جس کے تم عاشق بن گئے تھے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
سمجھنے کی زیادہ کوشش مت کرو, اس دنیا کا اپنا خاص قانون ہے. کامل کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی. اچھا پیسہ انہوں نے اس کو دیا لیکن خرچ کرنے کا موقع نہیں دیا.
آرزو, آرزو کا کیا ہوا؟
اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر ہم نے انٹرپول کو دیا ہے, فی الحال ہم انتظار کر رہے ہیں.
واقعی ڈرگ پوائزنگ کی شکار ہو گئے تھے؟
جی ہاں.
ہاں, تمہارا ہاسپٹل جانا پلاننگ کا نتیجہ تھا تاکہ کچھ دنوں کے لیے انٹیلیجنس کارندے کسی تشویش کے بغیر تمہیں اپنے پاس رکھ لیں. وزارت کی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کے افراد تمہارے پاس نہیں آئے؟
نہیں, اس رات کو میں نروس ہو گیا تھا. میں نے وہ نیند کی گولیاں جو ہمیشہ کھایا کرتا تھا حد سے زیادہ استعمال کر لیں, حد سے زیادہ استعمال کر لی تھی.
ہمارے ساتھ تعاون کے بارے میں تم نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟
نہیں.
ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟
جی ہاں.
شاباش شاباش, تم وہی ہوتے جا رہے ہو جو ہونا چاہیے. اپنے ماضی کو بھول جاؤ, اسے چھوڑ دو. یہ اہم نہیں ہے کس راستے سے اپنے مقصد تک پہنچو گے، اہم یہ ہے کہ پہنچ جاؤ۔
اس کی کیپیسٹی 12 GB ہے۔
امید ہے کہ وقت کے اندر ہی ہمارا پرنٹ پورا ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟
کچھ نہیں، یہ سی کا ہارڈ بھر گیا ہے، ابھی میں اس کو ڈی میں دیتا ہوں۔
یہ کیا ہے؟
تمہیں آج ہی رات لندن واپس جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ تمہیں خود ایران کی حکومت باہر نہ نکال دے اور اس سے زیادہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ ایرانیوں نے کہا ہے کہ تم موساد کے ساتھ تعاون کرتے ہو، یہ ہماری حکومت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن
لیکن کیا؟
لیکن یہ کہ پہلے سے طے شدہ ہو۔
نئے مہمان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ تم خیال رکھو کہ کیسی خواہش کا اظہار کرتے ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایک دن پوری ہو جائے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ دھیان رکھو کہ کس قسم کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ معلوم نہیں کہ تم کس طرح اس تک پہنچو گے۔ میں ہمیشہ ایک ایسے دن کی خواہش کرتا تھا جو میری زندگی کے دوسرے دنوں سے فرق رکھتا ہو، مگر یہ خواہش میری زندگی کو برباد کر رہی تھی۔
लेकिन अब मैं दूसरों की तरफ नहीं देखता हूँ, काहिली का भी एहसास नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, ऐसे काम जो मैंने इससे पहले नहीं किए हैं। मुझे अपने आप की तरफ देखना है, खुद अपने ऊपर नजर रखनी है, और मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए मेरे पास बहुत वक्त होगा, कम से कम इन दिनों में या इन महीनों में या शायद इन बरसों में जो मुझे जेल के कोने में मयसर होने वाले हैं। कौन क्या जाने, शायद इस अरसे में मैं बैठ जाऊं और दोबारा तर्जुमा करूं और उसको पेश करूं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ख्याल और हकीकत की सरहद को गंवा दिया है।
वजारत खारजा के तर्जुमान ने नामा निगारों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मिस्टर बर्नार्ड रिचर्डसन को, जो तेहरान में बरतानवी सिफारत खाने के इक्तिसादी अताशे के भेस में ईरान में जासूसी की सरगर्मियों और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की हमाहंगी करते रहे थे, बाहर निकाला जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तेहरान में बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदा दफ्तर से कहा गया है कि मौसूफ 24 घंटे के अंदर ईरान की सरजमीन छोड़ दें। मिस्टर बर्नार्ड रिचर्डसन सन 1989 से बैरूत के बरतानवी सिफारत खाने में इक्तिसादी अताशी के तौर पर सरगर्म थे। कुछ अरसे के बाद इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाद के साथ तआवुन शुरू कर दिया और बायो टेररिज्म के मकासद की तकमील के लिए उनकी मुलाजमत इख्तियार कर ली। मिस्टर बर्नार्ड एक ऐसे नेटवर्क के रुकन हैं जो हयातियाती तरीके से दहशतगर्दी के फरोग के मकसद के साथ मशरक वस्ता में सरगर्म अमल है। दस्याब होने वाली दस्तावेजात इस बात पर दलालत करती हैं कि मुतादित कंपनियां मोसाद के जरिए कायम की गईं ताकि बाज मुमालिक के जरिए खरीदी जाने वाली अशिया का ताकुब करते हुए उनको आलूदा बनाने के सिलसिले में इकदाम किया जा सके। वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि नाकाबिले इंकार दस्तावेजात में जो मिस्टर रिचर्डसन से हासिल की गई हैं, इलाके के मुल्कों में उनके माखज के नाम भी वाजे हो गए हैं। मजीद मालूमात और खबरें अगले बुलेटिनों में आप अजीज नाजरीन की समातों और नजरों की नजर कर दी जाएंगी।